लुका की मार्फत इंजील बाब 8। इसके कुछ देर बाद ईसा मुख्तलिफ शहरों और देहातों में से गुजरकर सफर करने लगा। हर जगह उसने अल्लाह की बादशाही के बारे में खुशखबरी सुनाई। उसके 12 शागिर्द उसके साथ थे, नेज कुछ खवातीन भी जिन्हें उसने बदरूहों से रिहाई और बीमारियों से शिफा दी थी। इनमें से एक मरियम थी जो मगदलनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकाली गई थीं। फिर युआन्ना जो खोजा की बीवी थी, खोजा हेरोदेस बादशाह का एक अफसर था, सुसन्ना और दिगर कई खवातीन भी थीं जो अपने माली वसाइल से उनकी खिदमत करती थीं। एक दिन ईसा ने एक बड़े हुजूम को एक तमसील सुनाई। लोग मुख्तलिफ शहरों से उसे सुनने के लिए जमा हो गए थे। एक किसान बीज बोने के लिए निकला। जब बीज इधर उधर बिखर गया तो कुछ दाने रास्ते पर गिरे, वहां उन्हें पांव तले कुचला गया और परिंदों ने उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, वहां वो उगने तो लगे लेकिन नमी की कमी थी, इसलिए पौधे कुछ देर के बाद सूख गए। कुछ दाने खुदरो कांटेदार पौधों के दरमियान भी गिरे, वहां उगने तो लगे लेकिन खुदरो पौधों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें फलने फूलने की जगह न दी, चुनांचे वो भी खत्म हो गए। लेकिन ऐसे दाने भी थे जो जरखेज जमीन पर गिरे, वहां वो उग सके और जब फसल पक गई तो 100 गुना ज्यादा फल पैदा हुआ। ये कहकर ईसा पुकार उठा, जो सुन सकता है वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि इस तमसील का क्या मतलब है। जवाब में उसने कहा, तुमको तो अल्लाह की बादशाही के भेद समझने की लियाकत दी गई है, लेकिन मैं दूसरों को समझाने के लिए तमसीलें इस्तेमाल करता हूँ ताकि पाक कलाम पूरा हो जाए कि वो अपनी आंखों से देखेंगे मगर कुछ नहीं जानेंगे, वो अपने कानों से सुनेंगे मगर कुछ नहीं समझेंगे। तमसील का मतलब ये है, बीज से मुराद अल्लाह का कलाम है। राह पर गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो कलाम सुनते तो हैं, लेकिन फिर इब्लीस आकर उसे उनके दिलों से छीन लेता है, ऐसा न हो कि वो ईमान लाकर निजात पाए। पथरीली जमीन पर गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो कलाम सुनकर उसे खुशी से कबूल तो कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ते। नतीजे में अगरचे वो कुछ देर के लिए ईमान रखते भी हैं, तो जब किसी आजमाइश का सामना करना पड़ता है तो वो बरगश्ता हो जाते हैं। खुदरो कांटेदार पौधों के दरमियान गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो सुनते तो हैं लेकिन जब वो चले जाते हैं तो रोजमर्रा की परेशानियां, दौलत और जिंदगी की ऐशो इशरत उन्हें फलने फूलने नहीं देती, नतीजे में वो फल लाने तक नहीं पहुंचते। इसके मुकाबले में जरखेज जमीन में गिरे हुए दाने वो लोग हैं जिनका दिल दयानतदार और अच्छा है। जब वो कलाम सुनते हैं तो वो उसे अपनाते और साबित कदमी से तरक्की करते फल लाते हैं। जब कोई चिराग जलाता है तो वो उसे किसी बर्तन या चारपाई के नीचे नहीं रखता बल्कि उसे शमादान पर रखता है ताकि उसकी रोशनी अंदर आने वालों को नजर आए। जो कुछ भी इस वक्त पोशीदा है वो आखिर में जाहिर हो जाएगा और जो कुछ भी छुपा हुआ है वो मालूम हो जाएगा और रोशनी में लाया जाएगा। चुनांचे इस पर ध्यान दो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा, जबकि जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जिसके बारे में वो ख्याल करता है कि उसका है। एक दिन ईसा की माँ और भाई उसके पास आए लेकिन वो हुजूम की वजह से उस तक ना पहुंच सके। चुनांचे ईसा को इत्तला दी गई, आपकी माँ और भाई बाहर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उसने जवाब दिया, मेरी माँ और भाई वो सब हैं जो अल्लाह का कलाम सुनकर उस पर अमल करते हैं। एक दिन ईसा ने अपने शागिर्दों से कहा, आओ हम झील को पार करें। चुनांचे वो कश्ती पर सवार होकर रवाना हुए। जब कश्ती चली जा रही थी तो ईसा सो गया। अचानक झील पर आंधी आई, कश्ती पानी से भरने लगी और डूबने का खतरा था। फिर उन्होंने ईसा के पास जाकर उसे जगा दिया और कहा, उस्ताद उस्ताद, हम तबाह हो रहे हैं। वो जाग उठा और आंधी और मौजों को डांटा। आंधी थम गई और लहरें बिल्कुल साख्त हो गईं। फिर उसने शागिर्दों से पूछा, तुम्हारा ईमान कहाँ है? उन पर खौफ तारी हो गया और वो सख्त हैरान होकर आपस में कहने लगे, आखिर ये कौन है? वो हवा और पानी को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। फिर वह सफर जारी रखते हुए गरासा के इलाके के किनारे पर पहुंचे, जो झील के पार गलील के मुकाबिल है। जब ईसा कश्ती से उतरा तो शहर का एक आदमी ईसा को मिला, जो बदरूहों की गिरफ्त में था। वो काफी देर से कपड़े पहने बगैर चलता फिरता था और अपने घर के बजाय कब्रों में रहता था। ईसा को देखकर वो चिल्लाया और उसके सामने गिर गया। ऊंची आवाज से उसने कहा, ईसा, अल्लाह ताला के फर्जंद, मेरा आपके साथ क्या वास्ता? मैं मिन्नत करता हूँ, मुझे अजाब में न डालें। क्योंकि ईसा ने नापाक रूह को हुक्म दिया था, आदमी में से निकल जा। इस बदरूह ने बड़ी देर से उस पर कब्जा किया हुआ था, इसलिए लोगों ने उसके हाथ पांव जंजीरों से बांधकर उसकी पहरेदारी करने की कोशिश की थी, लेकिन बेफायदा। वो जंजीरों को तोड़ डालता और बदरूह उसे वीरान इलाकों में भगाए फिरती थी। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, लश्कर। इस नाम की वजह ये थी कि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। अब ये मिन्नत करने लगी, हमें अथाह गड्ढे में जाने को न कहें। उस वक्त करीब की पहाड़ी पर सुअरों का बड़ा गोल चल रहा था। बदरूहों ने ईसा से इल्तिमास की, हमें उन सुअरों में दाखिल होने दें। उसने इजाजत दे दी, चुनांचे वो उस आदमी में से निकलकर सुअरों में जा घुसी। इस पर पूरे गोल के सुअर भाग भाग कर पहाड़ की ढलान पर से उतरे और झील में झपट कर डूब मरे। यह देखकर सुअरों के गल्लेबान भाग गए। उन्होंने शहर और देहात में इस बात का चर्चा किया तो लोग ये मालूम करने के लिए कि क्या हुआ है अपनी जगहों से निकलकर ईसा के पास आए। उसके पास पहुंचे तो वो आदमी मिला जिससे बदरूहें निकल गई थीं। अब वो कपड़े पहने ईसा के पास में बैठा था और उसकी जहनी हालत ठीक थी। यह देखकर वो डर गए। जिन्होंने सब कुछ देखा था उन्होंने लोगों को बताया कि इस बदरूह गिरफ्तार आदमी को किस तरह रिहाई मिली है। फिर उस इलाके के तमाम लोगों ने ईसा से दरखास्त की कि वो उन्हें छोड़कर चला जाए, क्योंकि उन पर बड़ा खौफ छा गया था। चिनांचे ईसा कश्ती पर सवार होकर वापस चला गया। जिस आदमी से बदरूहें निकल गई थीं, उसने उससे इल्तमास की, मुझे भी अपने साथ जाने दें। लेकिन ईसा ने उसे इजाजत न दी, बल्कि कहा, अपने घर वापस चला जा और दूसरों को वो सब कुछ बता जो अल्लाह ने तेरे लिए किया है। चुनांचे वो वापस चला गया और पूरे शहर में लोगों को बताने लगा कि ईसा ने मेरे लिए क्या कुछ किया है। जब ईसा झील के दूसरे किनारे पर वापस पहुंचा तो लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, क्योंकि वो उसके इंतजार में थे। इतने में एक आदमी ईसा के पास आया जिसका नाम याइर था। वो मकामी इबादत खाने का रहनुमा था। वो ईसा के पांव में गिरकर मिन्नत करने लगा, मेरे घर चलें, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो तकरीबन 12 साल की थी मरने को थी। ईसा चल पड़ा। हुजूम ने उसे यूं घेरा हुआ था कि सांस लेना भी मुश्किल था। हुजूम में एक खातून थी जो 12 साल से खून बहने के मर्ज से रिहाई न पा सकी थी। कोई इसे शिफा न दे सका था। अब उसने पीछे से आकर ईसा के लिबास के किनारे को छुआ, खून बहना फौरन बंद हो गया। लेकिन ईसा ने पूछा, किसने मुझे छुआ है? सबने इनकार किया और पतरस ने कहा, उस्ताद, ये तमाम लोग तो आपको घेर कर दबा रहे हैं, لیکن عیسیٰ نے اصرار کیا، کسی نے ضرور مجھے چھوا ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھ میں سے توانائی نکلی ہے۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ بھید کھل گیا تو وہ لرزتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے گر گئی۔ پورے ہجوم کی موجودگی میں اس نے بیان کیا کہ اس نے عیسیٰ کو کیوں چھوا تھا اور کہ چھوتے ہی اسے شفا مل گئی تھی۔ عیسیٰ نے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامتی سے چلی جا۔ عیسیٰ نے یہ بات ابھی ختم نہیں کی تھی کہ عبادت خانے کے رہنما یائر کے گھر سے کوئی شخص آ پہنچا۔ اس نے کہا، موت ہو چکی ہے، اب استاد کو مزید تکلیف نہ دیں۔ لیکن عیسیٰ نے یہ سن کر کہا، مت گھبرا، فقط ایمان رکھ تو وہ بچ جائے گی۔ وہ گھر پہنچ گئے تو عیسیٰ نے کسی کو بھی سوائے پترس، یوحنا، یعقوب اور بیٹی کے والدین کے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ تمام لوگ رو رہے تھے اور چھاتی پیٹ پیٹ کر ماتم کر رہے تھے۔ عیسیٰ نے کہا، خاموش، وہ مر نہیں گئی بلکہ سو رہی ہے۔ لوگ ہنس کر اس کا مذاق اڑانے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لڑکی مر گئی ہے۔ لیکن عیسیٰ نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا، اونچی آواز سے کہا، بیٹی جاگ، اٹھ۔ لڑکی کی جان واپس آ گئی اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر عیسیٰ نے حکم دیا کہ اسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے والدین حیرت زدہ ہوئے، لیکن اس نے انہیں کہا کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا۔